सर्वविदित है कि वसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। दो कारणों से इसका विशेष महत्व है। पहला, ये सरस्वती पूजन का पर्व है और दूसरा, इसे वसंत ऋतु का प्रवेश द्वार माना जाता है। माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान और समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री देवी है तथा वसंत ऋतु के नवसृजन और नए संवत्सर की प्रथम ऋतु होने के कारण दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। प्रश्न है कि वसंत पंचमी से जुड़े इन दोनों प्रसंगों में क्या कोई पारस्परिक संबंध है। एक और विचारणीय प्रश्न हमारे सामने आता है कि भारतीय कालगणना की दृष्टि से चैत्र एवं वैशाख वसंत ऋतु के मास हैं, जबकि प्रकृति में वसंत ऋतु के चिन्ह फाल्गुन मास में ही दिखाई पड़ने लगते हैं, और यह वसंत पंचमी तो उससे भी बहुत पहले माघ मास में आ जाती है। सरस्वती पूजन एवं वसंतागमन का समवेत पर्व। प्रश्न उठता है कि वसंत पंचमी को शिशिर ऋतु में मनाए जाने की क्या प्रासंगिकता है। शिशिर ऋतु के भी पूर्वार्ध में माघ और फाल्गुन दोनों शिशिर ऋतु के महीने हैं। भारतीय परंपरा में छहों ऋतुओं का मासिक क्रम इस प्रकार है। चैत्र वैशाख में वसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपद में वर्षा, आश्विन कार्तिक में शरद, मार्गशीर्ष पौष में हेमंत और माघ फाल्गुन मास में शिशिर। भारतीय वामे में इस विषय पर कोई सुस्पष्ट उत्तर नहीं मिलता कि वसंत ऋतु से लगभग 40 दिन पूर्व क्यों मनाया जाता है। यह अनुमान मात्र है कि अतिप्राचीन काल में कभी माघ और फाल्गुन मासों में ही वसंत के चिन्ह प्रकट होने लगे होंगे और यह पर्व उसी कालखंड का स्मृति चिन्ह होगा। ये भी संभव है कि वसंत आगमन के चिन्ह भारतवर्ष के किसी भूभाग में चैत मास लगने के पहले ही दिखाई देने से वहां यह वसंत पर्व मनाया जाने लगा होगा, जो अद्यावधि निरंतर बना हुआ है। इधर आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता में एक समांतर कालगणना का उल्लेख मिलता है, जिसमें फाल्गुन और चैत्र मास को वसंत ऋतु के अंतर्गत माना गया है। इस प्रकार वसंत ऋतु वर्तमान कालगणना से एक महीने पूर्व खिसक आती है। यों भी हमारे चतुर्दिक पसरी प्रकृति में हम देखते हैं कि वसंत किसी एक दिन एकाएक नहीं आधमकता। पतझड़ और पल्लवन का क्रम मास दो मास तक साथ चलता रहता है। वसंत ऋतु अपने यौवन पर भले ही चैत्र मास में आती हो, परंतु उसका बीज तो माघ मास की पंचमी को ही फूट जाता है। और इस तरह वसंत पंचमी, सरस्वती पूजन और वसंतागमन का समवेत पर्व बन जाती है। परंतु मूल प्रश्न इन दोनों घटनाओं के पारस्परिक संबंध का है। प्रश्न वसंत पंचमी में दोनों प्रसंगों के समाहित होने के औचित्य का है। माँ सरस्वती गीत, संगीत, काव्य आदि समस्त कलाओं की देवी है। दूसरी ओर वसंत ऋतु को कामनाओं को उद्दीप्त करने वाली ऋतु कहा जाता है। प्रेम, श्रृंगार, रतिक्रिया आदि का जितना वर्णन वसंत के साथ जुड़ा हुआ है, उतना किसी अन्य ऋतु के साथ नहीं। यहाँ तक कि समाधिस्थ शिव में कामभावना जगाने के लिए कामदेव ने भी अपने मित्र वसंत का ही सहारा लिया था। सरस्वती पूजन से वसंतागमन। वस्तुतः वसंत ऋतु का आरंभ सरस्वती पूजन के साथ होने से इस प्रश्न का उत्तर हमें भारतीय मनीषा की विलक्षण दृष्टि से साक्षात्कार कराता है। हमें भारतीय दृष्टि के इस अत्यंत मूल्यवान संदेश को समझना चाहिए, जो वसंत ऋतु मनुष्य की काम भावनाओं के उद्दीपन की ऋतु है, जो ऋतु सभी चेतन प्राणियों में कामोन्माद जगाकर प्राकृतिक जीव सृष्टि के लिए प्रेरित करती है, जो वसंत ऋतु हृदय में ठंडी पड़ी आग को दहकर देती है, उसके शमन शोधन का प्रबंधन है वसंत पंचमी पर्व। कामनाओं की वेगवती धारा को बाढ़ में बदलने से पूर्व ही मोड़ने का बंदोबस्त कैसे किया जाए, इस प्रचंड प्रवाह की मूल आत्मा को बचाते हुए इसे सहज शांत कैसे बनाया जाए, ये भारतीय परंपरा ने सिखाया है। क्योंकि यह प्रवाह निषिद्ध नहीं है, अपितु जीव सृष्टि के लिए अपरिहार्य है। आवश्यकता इसे रोकने की नहीं, साधने की है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है, कामस्तद्ग्रे संवर्तताधि मनसो रेत प्रथम यदासीत। अर्थात सबसे पहले रचयिता को काम का भाव आया, जो कि सृष्टि उत्पत्ति का पहला बीज था। अतः सृष्टि रचना की इन आधारभूत अपरिहार्य वासनाओं को रोका नहीं जा सकता। उत्पत्ति और विकास की धाराओं को रोकना नहीं, संस्कारित करना अपेक्षित है। इन वासनाओं को संस्कारित करने का कार्य साहित्य और कलाएं करती हैं। समस्त कलाएं मनुष्य की काम वासनाओं के रूपांतरण और परिष्कार से जन्मती हैं। कलाओं का अनुशीलन हमारी वासनाओं को ऊर्ध्वमुखी बनाता है, जो मनुष्य को सांसारिक कुंठाओं, क्लेशों और उपद्रवों से मुक्त कर सहज सुंदर बनाती है। कला कुल की स्वामिनी सरस्वती का पर्व वसंत पंचमी वसंत के साथ आने वाले काम के उद्दाम वेग को शमित, संस्कारित और नियंत्रित करने की पूर्व तैयारी है। वसंत ऋतु सृजन की ऋतु है। प्रकृति के सृजन व्यापार के समांतर मनुष्य के मन में भी सृजन व्यापार चलता रहता है। काम भी मूलतः मन की सृष्टि है, इसीलिए इसे मनसिज, मनोज आदि नाम दिए गए हैं, अर्थात मन में जन्म लेने वाला। साहित्य और कलाएं भी पहले मन में जन्म लेती हैं, फिर बाहरी रूपाकार ग्रहण करती हैं। ये कितनी विलक्षण बात है कि मनुष्य सृजन की ऋतु के सोपान पर चढ़ने से पूर्व सृजन की अधिष्ठात्री शक्ति की आराधना करे। गीत, संगीत, काव्य आदि समस्त कलाओं की देवी सरस्वती की वंदना के पीछे यही रहस्य छुपा है। सरस्वती की उपासना अर्थात साहित्य, कला, संगीत, ज्ञान की साधना। शिशिर की जड़ता जब वसंत की आंच में पिघलने लगती है तो तामस भाव राजस भाव में बदलने लगता है। सरस्वती उपासना का सात्विक भाव मनुष्य को राजसिक भावों से आक्रांत होने से बचाता है। अन्यथा कामदेव तो अपने सहचर वसंत के साथ धनुष बाण लिए तैयार बैठा है। अस्तु, ये सात्विक संतुलन स्थापित करने का पर्व है। समस्त कलाएं मनुष्य की काम वासनाओं के रूपांतरण और परिष्कार से जन्मती हैं। कलाओं का अनुशीलन हमारी वासनाओं को ऊर्ध्वमुखी बनाता है, जो मनुष्य को सांसारिक कुंठाओं, क्लेशों और उपद्रवों से मुक्त कर सहज सुंदर बनाती है। कलाजकुल की स्वामिनी सरस्वती का पर्व वसंत पंचमी वसंत के साथ आने वाले काम के उद्दाम वेग को शमित, संस्कारित और नियंत्रित करने की पूर्व तैयारी है। रूपांतरण का अधिष्ठान। पुरातन के रूपांतरण का अधिष्ठान है वसंत। ये जीर्ण शीर्ण आवरण को उतारने और नव पल्लवों को प्रस्फुटित करने की वेला है, जिसमें ध्वंस भी है, सृजन भी है, किंतु लक्ष्य है रूपांतरण का। रूपांतरण कुछ वस्त्र, आभूषण या मुखौटा बदलने भर का नाम नहीं है। ये रूपांतरण आत्मद्रव के बदलते जाने पर होता है। पुराने पत्ते, फूल, फल नवाकुरों पल्लवों के लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं, किंतु जड़ और तना अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते, बल्कि कुछ और अधिक मजबूती से धरती को पकड़े रहते हैं। शीत और ग्रीष्म के दो विपरीत बिंदुओं की संधि रेखा पर स्थित वसंत का ये प्रवेश द्वार गहरी रात के बीतने और पौ फटने का नैसर्गिक घंटाघोष है। ये जड़ता और अंधेरे से गति और प्रकाश की ओर चल पड़ने का संकल्प है। ये पुरातन के ध्वंस और नव प्रसव का उत्सव ही नहीं, वरन धरती के श्रृंगार का पर्व भी है। ऐसा लगता है मानो सद्य प्रसूता धरती गोटा पत्ती की पीली ओढ़नी और लाख का चूड़ा पहनकर मेहंदी, महावर, हल्दी, काजल, टिक्की से सजी धजी कुआ पूजन के लिए ढोलक की थाप पर मंगल गीत और जच्चा गाती हुई हंसी थिथोली करती स्त्रियों से घिरी बैठी हो। काव्य में वसंत। कवियों ने वसंत पर अद्भुत कविताएं लिखी है। पद्मावत के वसंत खंड में जायसी वसंत ऋतु का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण करते हैं कि इस ऋतु में सब कुछ नया नया देखकर उल्लास होता है और वातावरण ऐसा कि देर तक न धूप सुहाती न छा। खास बात यह है कि वे वसंत पंचमी को श्री पंचमी कहते हैं, जैसा कि भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी इसी नाम से जाना जाता है। दयु देव कैसो ऋतु गवाए, श्री पंचमी पहुंची आई भयो हुलास नवल ऋतु महा, खिन्न सोहाय धूप ओ छहा। पद्मावत भारतेदु हरिश्चंद्र वसंत को ऋतुओं का कंत पति कहकर वातावरण का मनोरम चित्रण करते हैं। कंत सखी आयो वसंत ऋतुन को कंत चहो दिसी फूली रही सरसो, वर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसो, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर है हरिचंद गयो घरसो, परसो को विताए दियो वर्सो त्रिसो कव पाए पिया परसो। हिंदी का शायद ही कोई बड़ा कवि होगा जिसने वसंत पर अपनी कलम न चलाई हो। तुलसीदास, सूरदास, विहारी, विद्यापति, पद्माकर, सेनापति, निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी, माखनलाल चतुर्वेदी, बच्चन आदि कवियों की ऋतुराज वसंत पर लिखी इन कविताओं में खिलते फूल, चटकती कलियों, नए चिकने पल्लव, आम की मंजरियों, सुगंधित पवन, उड़ते परागकण, झूमती सरसों, पंचम स्वर में कूंजती कोकिल, गुंजार करते भौरों, रंग बिरंगी तितलियों के रूप में मुखरित प्रकृति हमारे सामने हंसती खिलखिलाती झूमती नजर आती है। कहीं प्रणय व्यापार, कहीं प्रकृति के रंग गंध, कहीं चेतना का उल्लास हमारी हृदय तंत्री को झनकृत कर देता है। पाठक का चित मधुर मादक काव्य से सराबोर हो जाता है। साहित्य में यह वैविध्य भरा वसंत चित्रण अत्यंत मनोरम और हृदयावर्जक है। कुछ कवियों ने वसंत पंचमी को लक्ष्य कर सरस्वती वंदना के रूप में अद्भुत रचनाएं हिंदी साहित्य को दी है। निराला की वीणावादिनी वरदे कविता वसंत आगमन के पहले ही वसंत का बीज फूटने के प्रथम क्षण में हमारे चित में सात्विक सृजन का रोमांच भर देती है। कवि जब कहता है काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे, तो हमारे मन में ज्योति का झरना बहने लगता है। रोम रोम एक नई चेतना से आप्लावित हो उठता है और तभी नव नव की दशदिक आवृत्तियां तन मन में एक आनंदमय ऊर्जा का संचार करने लगती है। नव गति, नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ, नव जल्द मंद्रव, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। नए आकाश में नए नए पक्षियों को नई उड़ान और नए स्वर की कामना ही माँ सरस्वती की आराधना है। यही नव सृजन की आधार भूमि है। पुरातन का उन्मोक और नवीन का संधान ही संस्कृति की चिरनवीनता का रहस्य है। महादेवी की तीन शक्तियां हैं जो स्वतंत्र रूप से पूजी जाती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। लक्ष्मी की एकनिष्ठ उपासना मनुष्य को भौतिक समृद्धि की ओर ले जाती है, जिसकी चकाचौंध में वह मंगल मूल्यों के पथ से विरत हो जाता है। काली की एकनिष्ठ उपासना मनुष्य को वीरभाव और विजिगीषु वृत्ति की ओर ले जाती है, जिसके वशीभूत मनुष्य निरंतर संघर्ष में रहता है। एक में राजस का अतिरेक है, दूसरे में तामस का। सरस्वती की उपासना मनुष्य को ज्ञान विज्ञान की ओर ले जाती है, ये सहजता और शमन का पथ है जो सात्विक भावों का संवर्धन करता है। कहना न होगा कि स्वस्थ, समृद्ध और मंगलकारी जीवन के लिए सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों भावों का सामंजस्य और संतुलन आवश्यक है। महाकवि तुलसीदास मानस के प्रारंभ में मंगलाचरण में सर्वप्रथम देवी सरस्वती को ही नमन करते हैं। वंदे वाणी विनायको कहते हुए वे पहले सरस्वती का तदुपरांत गणेश का स्मरण करते हैं। महर्षि वेदव्यास भी सरस्वती को नमन करते हुए महाभारत की रचना आरंभ करते हैं। वे लिखते हैं, नत्वा सरस्वती देवी ततो जय मुदीरयेत, अर्थात सरस्वती देवी को प्रणाम करके जय नामक महाकाव्य को प्रारंभ करें। दुर्गा सप्तशती के प्राधानिक रहस्य में वर्णन आता है कि भगवती महालक्ष्मी के तमोगुण से महाकाली और सत्वगुण से सरस्वती प्रकट होती है। तामियुक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपं परमृप सत्वाख्यनाति शुद्धेन गुणेनेदु प्रबंध दधो अक्षमाला कुशधरा वीणा पुस्तक धारिणी सा वभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा दधो महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्याव्राह्मी कामधेनुर्वेद गर्भा चधीश्वरी श्लोक सम 1:4-16 प्राधानिक रहस्यम श्री दुर्गा सप्तशती अर्थात महाकाली को प्रकट करने के उपरांत महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण का था। वो श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे इस प्रकार नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, देवगर्भा और धीश्वरी। वस्तुतः महादेवी की तीन शक्तियां हैं जो स्वतंत्र रूप से पूजी जाती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। लक्ष्मी की एकनिष्ठ उपासना मनुष्य को भौतिक समृद्धि की ओर ले जाती है, जिसकी चकाचौंध में वह मंगल मूल्यों के पथ से विरत हो जाता है। काली की एकनिष्ठ उपासना मनुष्य को वीरभाव और विजिगीषु वृत्ति की ओर ले जाती है, जिसके वशीभूत मनुष्य निरंतर संघर्ष में रहता है। एक में राजस का अतिरेक है, दूसरे में तामस का। सरस्वती की उपासना मनुष्य को ज्ञान विज्ञान की ओर ले जाती है, ये सहजता और शमन का पथ है जो सात्विक भावों का संवर्धन करता है। कहना न होगा कि स्वस्थ, समृद्ध और मंगलकारी जीवन के लिए सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों भावों का सामंजस्य और संतुलन आवश्यक है।